ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। वे एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न बुनियादी और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं का लक्ष्य क्षेत्र में पर्यटन का विस्तार और पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार लाना है। श्री मोदी आरंभ पाठ्यक्रम के छठे चरण में 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के परीक्षार्थी अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष के पाठ्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत की रूपरेखा। इस पाठ्यक्रम में भारत की 16 और भूटान की 3 सिविल सेवाओं से 653 परीक्षार्थी अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व एकता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एकता की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिकारियों ने शपथ ली। विश्व एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। इस चरण में 604 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए मतदान होगा। उम्मीदवार कल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आज अंतिम दिन है। पहले चरण का मतदान 43 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार को देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने उनसे अपने निकटतम कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने को कहा है। आयोग ने उन्हें चुनाव संबंधी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में मतदान 20 नवंबर को होगा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। केरल सरकार ने कासरगोड में नीलेश्वरम के पास वीरार कावू मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान आग लग जाने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। इस अग्निकांड में 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सोमवार की रात हुई इस घटना के लिए मंदिर स्थल के पास बने पटाखों के स्टोर में हुए विस्फोट को जिम्मेदार माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट को इस घटना की जांच के लिए अलग से आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आग लगने के वास्तविक कारण का अभी पता नहीं चला है और मंदिर प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मुगल रोड और इससे जुड़े मार्गों पर सतर्कता और जांच बढ़ा दी है। मुगल रोड कश्मीर घाटी को जम्मू प्रांत के राजौरी और पुंछ तथा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 से भी जोड़ता है। भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा। समारोह को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह समझौता रेलवे को प्रौद्योगिकी साझाकरण, ट्रैक रखरखाव, प्रबंधन और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करेगा। रिजर्व बैंक ने कल विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर अप्रैल से सितंबर 2024 तक के 43वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688.27 अरब अमरीकी डॉलर था। इसका उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना है। भगवान राम की नगरी अयोध्या नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली मनाने और अब तक के सबसे भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपोत्सव पर राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 271 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी कल रात पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।